धवला लेक्चर नंबर 14 ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सर्वसाऊणं सिद्धमनंतमणिन्द्रिय मनुवमम पत्थसोखमणवज्रम् केवलपहोहनिज्य दुर्णयतिमिरञ्जिनम् नमः। ये आचार्य वीरसेन स्वामी रचित यह धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 112 पर, पहली पुस्तक चल रही ना, 112 नंबर का पेज है। देखो हम क्या कल देख रहे थे, ये दृष्टिवाद अंग का वर्णन चल रहा है, यानी ये जीवस्थान नाम का जो शास्त्र है उस संबंधी वर्णन करते करते ये जो द्रव्य श्रुत है उसकी बात चली थी। जो द्रव्य श्रुत जो है उसमें से उन्होंने अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ऐसी बातें बताई, और उसमें से 12 अंग कौन कौन से है उसकी बात की। दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है। अब ये जो दृष्टिवाद के ऊपर उसकी चर्चा चल रही थी अपने, तो उसके अर्थाधिकार की बात चल रही थी, यानी उसका उन्होंने अनुपूर्वी बताया, नाम बताया, प्रमाण बताया, वक्तव्यता बताई। अभी यहाँ पर अनुपूर्वी की बात चल रही, सॉरी अर्थाधिकार की बात चल रही थी। तो दृष्टिवाद के मुख्य 5 भेद है, परिकर्म है, सूत्र है, फिर पूर्व है, प्रथमान योग, तीसरा पूर्वगत, और फिर
अंतिम
चूलिका। ये उसके 5 भेद हैं। 110 पेज पर है, देखो नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। दृष्टिवाद के 5 अधिकार है, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। उसमें से परिकर्म में क्या क्या है, तो उसके भी 5 अधिकार है, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। अब उसका दूसरा सूत्र नाम का अर्थाधिकार है, वो उसमें ये जो मिथ्यावादी है उसका मत बता के उसका खंडन किया है कि कौन कौन से है ऐसे मिथ्यावादी, ऐसे कहने वाले जीव अबंधक ही है, ही लगाया, ही का अर्थ है सर्वथा उसी को मानना। हम भी जीव मोक्ष और बंध से रहित कहते हैं, परंतु वो किस अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा कह सकते हैं, या अपेक्षा वगैरह इनके कुछ नहीं है, एकांत मत है। तो ऐसे कौन कौन से है एकांत मत, 111 पेज पर नीचे का पैराग्राफ, यानी ये सब ही लगा कर ये जो कह रहे हैं वो सारी मिथ्या मान्यता है। कौन से जीव अबंधक ही है, अलेपक ही, अलेपक का अर्थ होते वो कर्म से रहित ही है, हाँ लिम पाया नहीं जा, अकर्ता ही है, देखो यानी सर्वथा करता रे, वो तो अपने परिणामों का करता है, अपना शुद्ध परिणाम तो वही कर रहा है। राग का अकर्ता कहने में आता है, परद्रव्य का अकर्ता कहने में आता है, ये सर्वथा अकर्ता मानने वाले हैं। अभोक्ता ही है, निर्गुण ही है, ये अन्यमति जो ऐसे निर्गुण सगुण ऐसे मानने वाले हैं उनमें। अणुप्रमाण ही है, हम तो कहते जीव तो असंख्यात प्रदेश हो तो अणुप्रमाण मानते हैं। जीव नास्ति स्वरूप ही है, जीव अस्थि स्वरूप ही है, कल हमने देखा था क्रियावादी अस्थि स्वरूप मानते हैं, अक्रियावादी नास्ति स्वरूप मानते हैं। पृथ्वी आदि 5 भूतों के समुदाय रूप से जीव उत्पन्न होता है, ये आपने लौकिक में सुना होगा, पंच महाभूत से जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं। चेतना रहित मानने वाले भी है, ज्ञान के बिना भी सचेतन है मानने वाले हैं, नित्य ही है, अनित्य ही है, ये सब मिथ्या मान्यताओं की चर्चा अपनी ये हो रही है। इत्यादि रूप से अभी उसके मुख्य मुख्य भेद बताए थे, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादियों के 363 मतों का पूर्व पक्ष रूप से वर्णन करता है। पूर्व पक्ष ने पहले उनकी क्या कहना है, उनकी मान्यता क्या है उसको रखेंगे, फिर बाद में उसका निराकरण करके जैन मत कैसा सही है वो बताएंगे। और भी अन्य अन्य जो मिथ्या मान्यता है उसका भी वर्णन करता है। तो उनकी बात चल रही थी यहाँ पर कि त्रैराशिकवाद, नियतिवाद, विज्ञानवाद, शब्दवाद, प्रधानवाद, द्रव्यवाद और पुरुषवाद का भी वर्णन करता है। तो उसके बारे में हम नीचे फुटनोट में देख रहे थे, त्रैराशिकवाद, नियतिवाद पढ़ा था, ये विज्ञानवाद क्या है उसको नीचे 3 नंबर की फुटनोट देखते, उसमें से जितना समझते उसका उतना समझेंगे। देखो तीसरा पॉइंट विज्ञानवाद, यानी उसको संस्कृत में कहेंगे विज्ञान अद्वैतवाद, प्रतिभासमानस्य अशेषस्य वस्तुनो, प्रतिभासमान होने वाले यानी ज्ञान में आने वाले अशेष वस्तु यानी सभी वस्तुएं, कुछ बाकी रखे बिना सभी वस्तुएं, सभी वस्तुओं का ज्ञान स्वरूप अंत प्रविष्टत्व प्रसिद्ध है। संवेदने में वो पारमार्थिकम तत्वम यथा ही, यानी वो तो वो जो ज्ञान मात्र ही वो सारा, अन्य कुछ है ही नहीं। यथा यद अवभासते तद ज्ञानम एव यथा सुखादि, यानी उनके लिए वो उदाहरण क्या देखते हैं, सुखादि आपको ख्याल में आता है वो ज्ञान ही है, ऐसे जो जो आपको ख्याल में आता है वो ज्ञान ही, अन्य कुछ है ही नहीं है। अवभासन्ते च भावायते यथा तथा यद वेत्ते तदि ज्ञानाद अभिन्नम यथा विज्ञान स्वरूपम, यानी जो कुछ वेदन में आता है वो ज्ञान से अभिन्न है, उसी को वो विज्ञान कहते हैं। वेद्यन्ते च नीलादय इत्यतोपि विज्ञान अद्वैत सिद्धिरिति, यानी बाह्य पदा बाह्यार्थ निरपेक्षम ज्ञान अद्वैतमेव ये बौद्ध विशेषा मन्वते ते विज्ञानवादिना, यानी बाह्य पदार्थों से निरपेक्ष, हम कहते हैं हम भी ज्ञान तो जानता है परंतु सामने वैसे पदार्थ भी है, उसकी भी अस्थि है, तो ये उसकी अस्थि नहीं स्वीकार करते, ऐसा वो विज्ञान अद्वैतवाद। आगे शब्दवाद, शब्दवाद यानी शब्द ब्रह्मवाद, सकलम योगजम अयोगजम वा प्रत्यक्षम शब्द ब्रह्म उल्लेख्य एव इव अवभासते बाह्य आध्यात्मिकार्थेषु उत्पद्यमानस्य अस्य शब्दानुविद्धत्वेन एव उत्पत्ते है, तत्संस्पर्श वैकल्ये प्रत्ययानां प्रकाशमानताया दुर्घटत्वात् वाग् रूपता ही शाश्वती प्रत्यवमर्षिणी च तद अभावे तेषां न परम रूपम अवशिष्यते, यानी वो शब्द ही है सब कुछ, शब्द को ही ब्रह्म बताया उन्होंने, वो सब शब्द रूप ही है कहते हैं। पहाणवाद यानी प्रधानवाद, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रधानम, ये जो अन्य मति मानते हैं ना सत्व रज और तम नाम के वो गुण मानते हैं और उसमें साम्य अवस्था प्रधान बताते हैं। प्रधानस्य वादः प्रधानवादः सांख्यवाद, यानी ये सांख्य मतियों की बात चल रही है। सांख्या नाम ही पुम अर्थ अपेक्षा प्रकृति परिणाम एव लोका, वो क्या कहते हैं, वो पुरुष है और प्रकृति है, वही दो तत्व है और वो प्रकृति के सारे रूप है, ऐसे उनकी मान्यता है। दववाद नहीं, ये हो गया ना, हाँ दववाद पढ़ना है। दववाद यानी द्रव्य एकांतवादी नित्यवाद, यानी बस वो पर्याय को स्वीकार नहीं करते, नित्यवादी है। यत कापिलम दर्शनम सांख्यमतम एतत् द्रव्यास्तिक नयस्य वक्तव्यम, यानी वो कापिल नाम का जो दर्शन है, सांख्यमत है, वो सब इसके अनुयायी है। यद उक्तम जम काविलम दर्शनम एयम दौवठ्यस्य वक्तव्यम, उसी के उन्होंने वर्णन किया उसमें। अब पुरुषवाद यानी पौरुषवाद, वो क्या कहता है, आलसड्ढो निरुच्छाहो फलम किंचिम न भुंजदे क्षण क्षीरादि पाणम वा पौरुषेण विना नहीं, यानी मात्र पौरुषता को ही स्वीकार करता है, अन्य जो निमित्त है, जो कुछ काल लब्धि है, नियति है, उसको किसी को स्वीकार नहीं करते, बस पुरुष पुरुषार्थ ही सब कुछ होता है मानने वाले ही लगाए ना, यानी वो एकांतवाद हो गया। और उसके लिए उदाहरण क्या दिया, यानी थोड़ा खीर आदि पाना हुआ पौरुष में बिना नहीं, यानी छोटा बच्चा भी माँ का दूध पीता है वो भी पुरुषार्थ के बिना नहीं होता। आलसी और निरुत्साही उसको कुछ भी फल नहीं मिलता ये कहते हैं। हाँ। अब आगे उसी की बात कही है, अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्राकृत में से बहुत सारा तो अर्थ ख्याल में नहीं आता है ना। अब इसके लिए कहा भी है ये उन्होंने श्लोक बताया यहाँ पर 113 पेज पर, 88 अहियारेषु चहुन्न महियारणमत्थ निर्देशो पड़मो अबंधयाणम विधियो तेरासियाण बोद्धवो नीचे उसका अर्थ। अच्छा, तदियो ये नियई पक्खे हवई चौथो स समयम ही, इसके बाद वो एक ही लाइन बताई उन्होंने। देखो 76 का अर्थ पहले देखते, इस सूत्र नामक अर्थाधिकार के पहला कौन सा देखा था हमने, परिक्रम, परिक्रम दृष्टिवाद के पहला अर्थाधिकार परिक्रम, और दूसरा है सूत्र। वो सूत्र में सूत्र नामक अर्थाधिकार के 88 अधिकारों में से 4 अधिकारों का अर्थ निर्देश मिलता है, उनमें पहला अधिकार अबंधकों का, दूसरा त्रैराशिक वादियों का, अभी हमने नाम देखे ना, तीसरा नियतिवाद का समझना चाहिए, तथा चौथा अधिकार स्व समय का प्ररूपक है। उन्होंने बताया था पहले मिथ्यावादियों के मत बताएंगे और अंत में स्व समय का वर्णन करेंगे। यहाँ इसके 3 ही लाइन है, देखो अभी उसका तीसरा दृष्टिवाद का जो तीसरा भेद है उसका नाम है प्रथमानुयोग। दृष्टिवाद अंग का प्रथमानुयोग अर्थाधिकार 5000 पदों के द्वारा पुराणों का वर्णन करता है। कहा भी है ये 77 से 80 तक, अभी सब एक साथ पढ़ेंगे। बार सविहं पुराणं जगदिष्ठं जिनवरे हि सव्वेहिं तं संवं वन्ने दिहु जिनवंसे रायवंसे परमो अरहंताणं विधियो पुनचक्रवर्तिवंशोदु विज्जहराणं तदियो चौथयो वासुदेवाणं चारणवंशोत पंचमोदु छठोयपन्नसमणाणं सप्तमो कुरुवंशो अठमोतः हरिवंशो नवमो यइक्खुयाणं दशमो वियकाशियाण बोद्धवो वायिनेकारसमो बारसमो नाहवंशोदु। देखो इसका अर्थ देखते नीचे, जिनेन्द्र देव ने जगत में 12 प्रकार के पुराणों का उपदेश दिया है, वे समस्त पुराण जिनवंश और राजवंशों का वर्णन करते हैं। प्रथमानुयोग के ये सारे, प्रथमानुयोग में 12 प्रकार के पुराण बताए, पहला अरहंत अर्थात तीर्थंकरों का, दूसरा चक्रवर्तियों का, तीसरा विद्याधरों का, चौथा नारायण प्रतिनारायणों का, पांचवा चारणों का, छठवा प्रज्ञाश्रमणों का वंश है, सातवा कुरुवंश, आठवा हरिवंश, नौवा इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु चाहिए ना, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु हुआ है, इक्ष्वाकु होता है ना, हमने अभी तक क्या पढ़ा, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु हुआ है, ऊपर क्या लिखा है, इक्खुयाणम, दसवां काश्यप वंश, ग्यारहवां वादियों का वंश और बारहवां नाथ वंश है। उनका जो वर्णन है उसकी बात यहाँ चल रही है। पृष्ठ संख्या 113 लास्ट है। दृष्टि ईश्वा को लिखा है, ईश्वा को हमने अभी तक तो पढ़ा था, ईश्वा को आज में क्या आप में क्या लें, ईश्वा को लिखा है, ईश्वा को, ईश्वा को होता है, ईश्वा ने ईश्वा को ईश्वा, हाँ क्ष को वा चाहिए, वो चाहिए ईश्वा को, शाह है ना उसके बाद इक्ष्वा चाहिए, इक्ष्वा। क्ष को वो जोड़ देना, इक्ष्वा को। हाँ तो ये 12 अलग अलग वंश बताए और उनके वर्णन होता है, उनके जो कुछ जो हुआ था ना उसकी कथा है उनकी। अब दृष्टिवाद अंग का पूर्वगत नाम का अर्थाधिकार, अभी हमने क्या क्या देखे, पहला परिकर्म, दूसरा सूत्र, तीसरा प्रथमानुयोग और ये पूर्वगत, इसमें 14 पूर्वों की बात होगी। तो दृष्टिवाद अंग का पूर्वगत नाम का अर्थाधिकार 95,50,00,000 और 5 पदों द्वारा उत्पाद, व्यय और द्रव्य आदि का वर्णन करता है। हर एक पूर्व का अपना अपना अलग अलग विषय है, उसकी बात बताएंगे। 95,00,00,000 यानी यही सबसे बड़ा होना चाहिए, है ना, क्योंकि 112 करोड़ सबसे मिलकर होता है। हाँ अब यहाँ पढ़ते हैं, 114 पेज पर आ गए। पूर्वों का यहाँ वर्णन नहीं है, केवल बस 14 पूर्व ही बात है। अब जो उसका पांचवा भेद है ना चूली का, उसके बाद चलेंगे दृष्टिवाद का पांचवा भेद आएंगे। जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता के भेद से चूलिका 5 प्रकार की है। एडिशन है इसका, यह अधिकार का नाम है चूलिका, तो उसमें किस संबंधी चूलिकाएं हैं वो सब बताएंगे। उनमें से जलगता चूलिका 2,09,89,000 200 पदों द्वारा जल में गमन और जलस्तंभन के कारणभूत, जलस्तंभन करना है ना, रोक देना या उसको बीच में से ऐसा करके चल भी सकते हैं, जलस्तंभन करना उसके कारणभूत, मंत्र, हाँ मंत्र, तंत्र और तपश्चर्या रूप अतिशय आदि का वर्णन करती है। स्थलगता चूलिका, ये जो 5 चूलिका है ना, सब में उतने उतने ही पद है, 2,09,89,200। स्थलगता चूलिका उतने ही पदों द्वारा, वही 2,09,89,200 पदों द्वारा पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपश्चरण रूप आश्चर्य आदि का तथा वास्तु विद्या और भूमि संबंधी दूसरे शुभ अशुभ कारणों का वर्णन करती है। वास्तु विद्या ने वो जो उस संबंधी उस जो साइंस है, जैसे हमारे ये होता है ना स्थापत्य, स्थापत्य ने इंजीनियरिंग का, बिल्डिंग का वगैरह, उसका उसका साइंस है, वैसे ही ये होता है वास्तु विद्या। परंतु ये वास्तुशास्त्र के नाम पर अभी जो कुछ चल रहे हैं ना, मिथ्या मान्यताओं का पोषण, उसके कारण मैं सुखी होता हूँ। उसका हम निषेध करते तो लोग कहते देखो देखो इसमें भी वास्तु विद्या आती है और आप उसका निषेध कर रहे हैं, ये ज्योतिष नाम का भी शास्त्र है आप उसका निषेध, उसका निषेध कहाँ है? उसके कारण मैं सुखी दुखी होता हूँ और ये मेरा कुछ चेंज हो जाता है, ये मान्यता है उसके पीछे लगते हैं। अरे वास्तु ने वसना, तो हम स्वयं जो है अपने गुणों पर्याय में बसते हैं, उस वास्तु का तो अता पता नहीं है और बाह्य वास्तु में जीव रचा पचा रहता है। उसकी बात मायागता चूलिका उतने ही अर्थात 2,09,89,200 पदों द्वारा माया रूप यानी इंद्रजाल आदि के कारणभूत मंत्र तंत्र और तपश्चरण का वर्णन करती है। हाँ वो पढ़ते हैं परंतु ये पढ़कर जो गिर जाएंगे तो कुछ नहीं रहते ना उनका। और जो आगे आगे वाली बात है ना, जो 14 पुरुओं का अभ्यास करेंगे वो तो गिरेंगे नहीं, उसको पढ़कर भी, क्योंकि ये तो सारी ऐसे रिद्धियां सहज भी प्राप्त होती है, वो तो इसके लिए कुछ मंत्र तंत्र साधना नहीं करते हैं तो पर इनके मंत्र है नहीं, वो भी विद्याएं विद्याधर थे ना वो, तो विद्याएं थी उनकी, कुछ तो उनकी नेचुरल होती है और कुछ तो पितृपक्ष के से आती है, कुछ मातृपक्ष, और वो भी तपश्चरण से कुछ प्राप्त होती है, उसके भी कुछ मंत्रादि होते हैं जैसे बहुरूपिणी विद्या है वगैरह वगैरह। रूपगता चूलिका उतने ही पदों द्वारा वही 2,09,89,200 सिंह घोड़ा और हरणादि के स्वरूप के आकार रूप परिणमन करने के कारणभूत मंत्र तंत्र और तपश्चरण का तथा चित्रकर्म काष्ठ कर्म कर्म चित्रकर्म यानी चित्र बनाने, काष्ठ यानी वो जो लकड़ी में जो कार्विंग होता है कोरियो काम उसकी बात है, लेप्य कर्म का अर्थ होता है जैसे मिट्टी से वगैरह बनाते हैं ना, जैसे गणपति वगैरह की मूर्ति कैसे बनाते हैं वो शाड़ू की जो मिट्टी है उससे वो बनाते हैं, और शिल्प कर्म भी होता है ना, लेन कर्म का अर्थ होता है शिल्प कर्म उत्खनन, लेन यानी उत्खनन यानी जैसे पत्थर में उखेरते हैं, जैसे हमारी मूर्तियाँ कैसे होती है पत्थर को शिल्प करके वो बनाई जाती है, और अन्य जो कुछ है वो कैसे मिट्टी से लेप देने उसका लेप बना के उसकी बात होती है। आकाशगता चूलिका उतने ही पदों द्वारा आकाश में गमन करने के कारणभूत मंत्र तंत्र और तपश्चरण का वर्णन करती है, इसका आकाशगामिनी विद्या भी कहते हैं उसको। इन पांचों ही चूलिकाओं के पदों का जोड़ 10,49,46,000 पद है। जीवस्थान शास्त्र में क्या परिक्रम से प्रयोजन है? अभी हमेशा यही पूछ रहे थे ना, किससे प्रयोजन है, तो पहले पूछ रहे हैं क्या परिक्रम से प्रयोजन है, क्या सूत्र से प्रयोजन है। देखो पहले भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, तो दृष्टिवाद से प्रयोजन है ये बात आई थी पेज नंबर 109 पर। नीचे के पैराग्राफ में क्योंकि वहाँ बताया था ना उसमें कैसे कैसे होती है, उसमें ये पूरा जो शुत जो है अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य वगैरह वगैरह की बात आई थी, तो उसमें से पूछा गया था, तो आचारांग से प्रयोजन है कि सूत्रकृतांग से है कि स्थानांग से है कि समवायांग है, एक एक का नाम करके पूछा था, तो वहाँ बताया था कि दृष्टिवाद से प्रयोजन। अभी दृष्टिवाद सा फिर उसका वर्णन किया, दृष्टिवाद का वर्णन किया पहले इसी पद्धति से, पहले श्रुत ज्ञान से बात की थी तो श्रुत ज्ञान के फिर भेद बताए थे, और श्रुत ज्ञान के भेदों में से फिर ये सारे अंगों और पूर्वों के भेद बताकर फिर बताते दृष्टिवाद से प्रयोजन, दृष्टिवाद के सभी अधिकारों का वर्णन किया, अब कहते उसमें इन पांच में से किससे प्रयोजन है, प्रथमानुयोग से प्रयोजन है कि परिक्रम से प्रयोजन है, किससे प्रयोजन है, तो ये पूछ रहे यहाँ पर। तो इस जीवस्थान शास्त्र में क्या परिक्रम से प्रयोजन है, क्या सूत्र से प्रयोजन है, इस तरह सबके विषय में पृच्छा करनी चाहिए। आप पृच्छा करना, कितने हैं उतने प्रश्न हो गए, कितने हो गए बोलो। ये क्या पूछा है ना, इस जीवस्थान शास्त्र में क्या परिक्रम से प्रयोजन है, क्या सूत्र से प्रयोजन है, आगे के प्रश्न पूछो आप। हाँ, क्या प्रयोजन है, उससे प्रयोजन है, क्या पूर्वगत से प्रयोजन है, समझ में आई ना बात। यहाँ पर परिक्रम से प्रयोजन नहीं है, सूत्र से प्रयोजन नहीं है, इस तरह सबका निषेध करके यहाँ पर पूर्वगत से प्रयोजन है ऐसा उत्तर देना चाहिए। यानी जीवस, हाँ देखो, पहले हमने कहाँ से शुरुआत किया था, श्रुत ज्ञान से, पूरे श्रुत ज्ञान से, उसमें से फिर अंग अंग बाह्य की वर्णन किया, तो उसी बाह्य ग्यारह अंगों से प्रयोजन नहीं, दृष्टिवाद से प्रयोजन है। दृष्टिवाद में पांच भेद है वो सब बता चुके, अब कहते उसमें से पूर्वगत से प्रयोजन, उसमें से जो परिक्रम है वो तो अन्य सूत्र है, प्रथमान योग है और लास्ट वाला चूलिका, उससे प्रयोजन नहीं है, यानी ये विषय उसमें से नहीं लिया गया है, ऐसा उत्तर देना चाहिए। अब पूर्वगत से प्रयोजन बताए ना, अब उस पर उपक्रम चलेगा। पहले जीवस्थान पर उपक्रम लगाने गए, फिर श्रुत ज्ञान पर उपक्रम लगाया, फिर दृष्टिवाद पर लगाया, अब इससे लगाएंगे। तो उसका उपक्रम पांच प्रकार का है, उपक्रम हमेशा बताए 73 पेज पर बताए थे हमने, पहले में पहले अनुकूल, फिर नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। इसलिए पूर्व के जो भेद है वो पहले नहीं बताए थे, अब जाके बताएंगे, 14 पूर्व के अर्थाधिकार अब बताएंगे। देखो ये उपक्रम पांच प्रकार का है, वो अनुपूर्वी ने आनुपूर्वी चाहिए, जिसके पुस्तक में करेक्शन नहीं किया है वो करेगा। नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार, उनमें से पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी के भेद से आनुपूर्वी तीन प्रकार की है। अब यहाँ पूर्वानुपूर्वी से गिनने पर, अभी ये जो हमने दृष्टिवाद के पांच अधिकार देखे, उनमें से इस अधिकार का नंबर कौन सा है, पहला कौन सा था, पूर्वगत, दूसरा सूत्र, तीसरा प्रथमानुयोग और ये चौथा है, इसलिए कहते पूर्वानुपूर्वी से चौथा होगा, पश्चातानुपूर्वी से दूसरा होगा, यथानुति से उसका नाम ही पूर्वगत कह देंगे। यहाँ पूर्वानुपूर्वी से गिनने पर चौथे पद भेद से, पश्चादानुपूर्वी से गिनने पर दूसरे भेद से, और यथा तथानुपूर्वी के भेद से गिनने पर पूर्वगत से प्रयोजन है, फुल स्टॉप देना यहाँ पर। यानी इसका अर्थ क्या है, जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं उसका क्रम निश्चित है ना, तभी तो बता सकते हैं। हाँ, हम तो चाहे जैसा उल्टा सुलटा बताए वो नहीं चलेगा, इसी क्रम से बताना पड़ेगा। जो पूर्वों को प्राप्त हो अथवा जिसने पूर्वों के स्वरूप को प्राप्त कर लिया हो उसे पूर्वगत कहते हैं। इस तरह पूर्वगत यह गौण्य नाम है, मेरे गुण के अनुसार जो नाम आता है उसको गौण्य नाम कहते हैं। वह अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोग द्वार की अपेक्षा, संख्यात और अर्थ की अपेक्षा अनंत प्रमाण है। देखो ये जो ज्ञान के, श्रुत ज्ञान के भेद बताए थे, तो उसमें से अक्षर का भी अनंतवा भाग जो है उसको पर्याय नाम का ज्ञान कहते हैं, और उसमें जो ज्ञान में जो कुछ थोड़े थोड़े अंशों की वृद्धि होती है, कभी अनंतवा भाग बढ़ता है, कभी असंख्यातवा भाग बढ़ता है वगैरह वगैरह, तो वृद्धि होते होते बहुत बार अनंत भाग भी वृद्धि होगी, ऐसे असंख्यात बार षट्स्थान वृद्धि होते होते फिर अक्षर नाम का ज्ञान आता है। तो मिनिमम है उसका नाम है पर्याय ज्ञान, और इन बिटवीन इतने सारे भेद देखे अक्षर तक, उसको कहेंगे पर्याय समास ज्ञान। फिर अक्षर ज्ञान एक अक्षर संबंधी, फिर दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, पांच अक्षर, ये सारे अक्षर एक एक से बढ़ते हुए अक्षर समास कहलाएंगे। एक अक्षर संबंधी वो अक्षर ज्ञान,
एक दूसरा में भी अनंत गुणा,
अनंत गुणा उसमें नहीं होती, बस एक से दो अक्षर वाले हो जाते, उसमें नहीं होती। तो कहते वो अक्षर के बाद वो पद, कितने अक्षरों का पद होता है, 1634,83,07,888। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते बढ़ते वो 1634 करोड़ तक चले जाना, ये सारे अक्षर समास कहलाएंगे। एक वाला वो अक्षर और 1634 करोड़ वगैरह वगैरह वो वाला पद, उसका नाम है पद, इन बिटवीन वो सारे अक्षर समास, एक एक अक्षर से बढ़ते हुए अक्षर समास के भेद हो गए। उसके बाद संख्यात हजार पदों के संघात नाम का हो जाता है, ऐसे संघात संख्या संघात उसका नाम ही, जैसे पद है वैसे अनेक पदों का समूह, उसको संघात कहेंगे। उतने ही संख्यात हजार संघातों का एक प्रतिपत्तिक होगा, और बिन बिटवीन जो सारे भेद है ना, संघात समास कहेंगे। उसमें कितने, एक संघात, फिर दो संघात, तीन संघात, उसमें सारे अक्षर पद से बढ़ते बढ़ते सब ले लेना, यानी संघात प्लस एक अक्षर, संघात प्लस दो अक्षर, फिर संघात प्लस एक पद, इस तरह से बढ़ाना उसको, तो ये प्रतिपत्तिक हो जाता है। ऊपर लिखा था ना अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति वगैरह, तो ऐसे प्रतीक संख्या हजार होते हैं तो अनुयोग हो जाता है, अनुयोग नाम का ज्ञान कहलाता है, और इन बिटवीन सारे वो प्रतिपत्तिक समास हो जाएंगे। ऐसे चार अनुयोगों का फिर प्रावृतक प्रावृतक होता है, ये इन बिटवीन वो समास वाले समझ लेना। फिर प्रावृतक प्रावृत के बाद प्रावृत होता है, उसके बाद वस्तु नाम का अधिकार होता है, उसके बाद पूर्व होते हैं, एक पूर्व से दूसरे पूर्व, फिर अक्षर बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, संगत बढ़ेगा, बीच में सारे, फिर दूसरा पूर्व, फिर तीसरा पूर्व, इस तरह से वो बढ़ेंगे, उसको भी पूर्व समास कहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि फिर भी उसकी संख्या कितनी कहलाएगी, संख्या,
संख्या।
तो अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति ऊपर पड़ रही हूँ मैं, और अनुयोग द्वार की अपेक्षा संख्यात और अर्थ की अपेक्षा अनंत प्रमाण है, उसमें से तो अर्थ तो अनंत निकलता है। हाँ, फिर प्रावृत समास, फिर वस्तु, वस्तु समास, पूर्व,
पूर्व
और पूर्व समास, लास्ट में पूर्व और पूर्व समास।
वो क्या है सर?
ये श्रुति ज्ञान के बीच भेद कहलाते। देखो मैं वो समास वाला छोड़ देती हूँ, आपको मुख्य रखना पर्याय, बीच में गैप छोड़ो, पर्याय समास लिखने के लिए, फिर अक्षर, पहले पर्याय आएगा, पर्याय, फिर अक्षर, फिर पद, फिर संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, उसके बाद प्रावृतक प्रावृतक जोड़ कर लेना है, दो बार वो शब्द लिखना, प्रावृतक प्रावृतक, उसके बाद अकेला प्रावृत लिखना, क नहीं लगाना, सिंगल प्रावृत लिखना, फिर वस्तु, फिर पूर्व, अभी जो जो लिखे उसके बाद उसके समास शब्द डाल दो, समास है ना, उसके अनेक भेद हो गए, जो पर्याय वाले हैं वहां पर षट्स्थान वाले भेद होते हैं, बाकी सब में अक्षरों से एक एक अक्षर बढ़ते हुए आगे के भेद हो गए। अक्षर अक्षर समास इस तरह, यानी पूर्व समास कैसे लेना, एक पूर्व संबंधी ज्ञान है, पूर्व प्लस एक अक्षर, पूर्व प्लस दो अक्षर, पूर्व ऐसे करते करते पूर्व प्लस एक पद, यानी वो हर बार वो पद संघात प्रतिपत्ति सब इससे ही बढ़ेंगे, तब जाके दूसरे पूर्व संबंधी ज्ञान होगा, और हर एक पूर्व में कितनी वस्तु होती वगैरह सब उसका वर्णन आता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। यानी वो तो क्योंकि ये जो है ना शुद्ध ज्ञान है, इसमें अक्षरों के भेद है, वो पर्याय वाला भेद इसमें नहीं होगा, वो अनक्षरात्मक में चला जाता है, पर्याय पर्याय समास वो अनक्षरात्मक है, और ये सारे अक्षर के भेद है। हाँ, इसलिए यानी इसमें वो पर्याय वाले भेद इसके अंदर नहीं डालना, श चर्च स्थान वाले भेद इसके अंदर नहीं आ, इसलिए इसके भेद कितने हो गए तो संख्यात हो गए। अक्षर से ये शुरू होता है, यह लिखा ना अक्षर पद संघात, और अर्थ तो अनंत होता ही है इसमें। अभी तक हमने क्या देखा, अनुपूर्वी देखी, नाम देखे, प्रमाण बताया, अक्षर की अपेक्षा वो संख्यात है और अनंत है, अभी वक्तव्यता बता रहे आप। तो तीनों वक्तव्यताओं में से यहां ये पूर्वों में स्वसमय वक्तव्यता समझना चाहिए, यानी यहां स्वसमय का ही कथन है। अर्थाधिकार से 14 भेद है, यानी जो 14 पूर्व जो कहते हैं ना उसके ये नाम है। हाँ अभी बताएंगे वो, वे ये है, आप उसके ऊपर एक एक आंकड़ा लिख सकते हैं। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद, वीर्यानुप्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुप्रवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदु सार पूर्व। हर एक के आगे पूर्व शब्द लगा लेना, उस संबंधी उसमें विषय उसका वाद ने कथन प्रवाद मुख्य, जैसे शांत प्रशांत कहते इस तरह से प्रवाद पूर्व। हाँ यहाँ पढ़ सकता है क्योंकि विद्यानुवाद पूर्व है ना, उसमें वो मैली विद्या वगैरह उसका जो है, यानी दस पूर्वी का ज्ञान होने पर भी कोई उसको पढ़कर गिर सकता है, मिथ्या तो नहीं जा सकता है। और मिथ्या दृष्टि तो 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ सकता है मिथ्या दृष्टि, उसका पाठ ही हो सकता है मिथ्या
दृष्टि।
समय दृष्टि और 10 पूर्व वाला भी पढ़ने वाला तो समय दृष्टि, पर बाद में वो भ्रष्ट हो सकता है। ये क्या वो रुद्र की बात आती है ना, 10 पूर्वी है और फिर बाद में वो इनका यानी उसके फल चाहते हैं इन विद्याओं का, जैसे वशीकरण चारण मारण वगैरह जो कुछ उसके ये होते हैं ना, हाँ भ्रष्ट हो
जाते,
वो भी पढ़ सकता है, वो भी पढ़ सकता है 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठ हो सकता है। परंतु 10 पूर्वी जो कहते हैं ना, श्रेणी चढ़ने वाले तो 10 पूर्वी तो होने ही चाहिए, 10 या 14 पूर्वी वाले होते हैं, उसके बिना श्रेणी नहीं चढ़ी जाती है। याद है आद्य जो पूर्वविदा, शुक्ल ध्यान के जो पहले दो भेद है वो पूर्वविदों के होते हैं, ये पूर्व है। तत्वार सूत्र में सूत्र है ना मुनिराज ही है ना, उनको पढ़ने का ही है ना उनका, और दूसरा क्या करेंगे। ज्ञान ध्यान वो बस अध्याय वगैरह यही उनके लिए होता है। उनमें से प्राणावाय पूर्व लिखा, प्राणानुप्रवाद लिखा है, प्रवाद आगे आता है ना, आत्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, प्राणावाय पूर्व ही है 123 पेज पर। नहीं नहीं प्राणावाय ही है, पेज पर भी आया है प्राणावाय पूर्व। प्राणावाद भी कहते हैं क्योंकि नीचे लिखे ना प्राणानाम आवाद प्ररूपणम अस्मिनिति प्राणावादम द्वादशम पूर्वम। गोमरसार जीव कांड में 366 366 गाथा भी बताई उन्होंने, प्राणावाद लिखा है उसमें, पर नहीं यहाँ प्राणावाय कहा है। 366 है ना, 504 पेज पर है ये। यहाँ पर विद्यानुप्रवाद लिखा हुआ, ये विद्यानुवाद लिखा है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। प्राणावाद लिखा है, कल्याणवाद लिखा है, प्राणावाय के बदले प्राणावाद भी लिखा है, दोनों ही नाम आते हैं। तो यहाँ जो उसके नाम बताए अलग अलग, उसका वर्णन करेंगे अभी, उसका विषय क्या क्या है उसके बाद चलेगी। ये डिटेल में है। हाँ देखो, अभी उनमें से उत्पाद पूर्व दशवस्तुगत, यानी दशवस्तुगत का अर्थ क्या है अश्विन भाई?
ये जो शब्दों का है अक्षर के, इतने दस
वस्तु अधिकार, दस वस्तुओं का इस पूर्व में दस वस्तु अधिकार होते हैं।
प्रावृत समाज के बाद जो वस्तु आता है
देखा,
ऐसे दस वस्तु में 200 प्रावृत और
1000 वस्तु और पूर्व की बात हम देखते हैं। पर्याय पर्याय समास को छोड़ देते हैं। अक्षर की बात हमने बताई थी, एक एक अक्षर से वृद्धि होते होते वो पद नाम का हो जाता है, पदों में फिर वो संख्यात हजार पदों का एक संघात हो जाता है, उसकी भी बात बताई थी आपको। यानी दो पद चार पद ऐसे कितने हो जाएंगे? संख्यात हजार हो जाएंगे। ऐसे ही संख्यात हजार संघातों का प्रतिपत्तिक होगा। उसके बाद अनुयोग तक हमने बताया था आपको, 470 मैं फास्ट देख रही हूँ, 472-473 पर अभी आई हूँ। संख्यात हजार प्रतिपत्तिकों का एक अनुयोग हुआ, अभी ये इसमें 14 मार्गणा के स्वरूप का प्रतिपादक अनुयोग नाम का शुद्ध ज्ञान है, ये बात 473 पेज पर आई थी। उसके बाद एक एक अक्षर पद संघात की वृद्धि होते होते चार अनुयोगों की वृद्धि के बाद जो होता है वो प्रावृतक प्रावृतक होता है। अब उसके आगे देखना है। हाँ, चार अनुयोगों का एक प्रावृतक प्रावृतक हुआ। चौबीस प्रावृतक प्रावृतक का एक प्रावृत हुआ और 20 प्रावृतों का एक वस्तु नाम का अधिकार हुआ। अब कितने वस्तुओं का एक पूर्व होगा? तो उसके हर एक के पूर्व के वस्तु जो अधिकार है उसकी संख्या अलग अलग है। जैसे पहला जो है ना, पहला उत्पाद नाम का है, उसमें 10 पूर्व है, फिर 14 पूर्व है, 8 है, 18, 12, 12 वगैरह वगैरह अलग अलग भेद है। 475 पेज पर लिखा है, मिला? तो इतने इतने वस्तु अधिकारों का एक एक वहाँ पहला पूर्व, फिर दूसरा पूर्व, पहले पूर्व के ऊपर इतने बढ़ेंगे तब जाके दूसरा पूर्व होगा, इस तरह से लेना उसका। अभी हम यहाँ क्या लिखा है उसको देखते हैं। उनमें से पेज नंबर 115 लास्ट लाइन, उत्पाद पूर्व दश वस्तुगत 200 प्रावृतों के, यानी उसमें 10 वस्तु है और एक एक वस्तु में 20-20 प्रावृत है। इसका अर्थ समझ में आया? यानी एक वस्तु में 20 प्रावृत, हाँ, इसलिए 10 में 200 प्रावृत, 10 वस्तु और 200 प्रावृत नहीं लेना, 10 वस्तुगत 200 प्रावृतों के 1 करोड़ पदों द्वारा जीव काल और पुद्गल द्रव्य के उत्पाद व्यय और द्रव्य का वर्णन करता है। इसका नाम है उत्पाद पूर्व, है ना। अग्र अर्थात द्वादशांगों में प्रधानभूत वस्तु के अयन अर्थात ज्ञान को अग्रायन कहते हैं। वो नेक्स्ट वाला वर्णन चलेगा, उसके पहले 115 के फुटनोट में देखेंगे हम। वस्तुनः द्रव्यस्य उत्पाद व्यय द्रव्यादि अनेक धर्म पूरकम उत्पाद पूर्वम, यानी वस्तु में जो उत्पाद व्यय ध्रुवता वगैरह जो अनेक धर्म बताए हैं, उन्होंने जीवकांड की ही बात यहाँ बताई है 366 की, उसी को हम यहाँ से पढ़ेंगे।
यहाँ पे इसे बताया 200 प्रावृत में 1 करोड़ पद है, 200 प्रावृतों के 1 करोड़ पद द्वारा,
बराबर है। उसमें
तो पद के पीछे ये संगात अनुयोग अरे बा ये पीछे संगात प्रतिपत्ति और अनुयोग वो भी उसमें ये गर्भित
ये गर्भित है सारे टोटल पद बताए उसके, क्योंकि संख्यात हजार उनका एक संघात होगा, इतने संख्यात हजार उनका प्रतिपत्ति होगा उसके, वो सब उसके आ गए। दस वस्तुएं हैं
या 200 प्रावृत
है, या उसका अर्थ हो गया 200 प्रावृत है,
हाँ,
और 200 प्रावृत का अर्थ हो गया
1 करोड़ पद है,
1 करोड़ पद,
हाँ, बस बस वही ऐड नहीं करना है। अभी इसका विषय क्या है आप निकाल, पेज नंबर 498 में जीवकांड की बात करें, 366 अभी हम हर एक इसका ले लेते हैं विषय। उत्पाद पूर्व में मिला तेज 498 पेज, मैंने अपना हिंदी जीवकांड पेज 498 ये गाथा है, हाँ 365-66 ये नीचे गोमरसार जीवकांड लिखा ना 366 उसी का मैं अर्थ हिंदी में पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो सारा प्राकृत में पढ़ू फिर हिंदी करूँ उसके बदले मैं डायरेक्ट पढ़ती हूँ। देखो उत्पाद पूर्व का अर्थ देखते हैं, वहाँ वस्तु के उत्पाद व्यय द्रव्य आदि अनेक धर्मों का पूरक व उत्पाद नामक प्रथम पूर्व है। इसमें 498 पेज, इसमें जीवादि वस्तुओं का नाना प्रकार के नए विवक्षा से क्रमवर्ती और युगपद अनेक धर्मों द्वारा हुए जो उत्पाद व्यय द्रव्य वे तीनों काल की अपेक्षा से 9 धर्म हुए। उत्पाद व्यय द्रव्य भूत वर्तमान भविष्य 3-3 9 हो गए, सो उन धर्मरूप परिणमित वस्तु भी 9 प्रकार की होती है, उनकी अपेक्षा वस्तु को 9 प्रकार की बताया। उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होगा, नष्ट हुआ, नष्ट हो रहा है, नष्ट होगा, स्थिर हो गया, स्थिर हो रहा है, स्थिर होगा, ऐसे 9 प्रकार का द्रव्य हुआ। इन एक एक के 9-9 उत्पन्नपना आदि धर्म जानने ऐसे 81 भेद युक्त द्रव्य का वर्णन है। इससे 200,000 से 50 को गुणा करने पर 1 करोड़ इतने पद जानने, यह लिखा ना 1 करोड़ पद। इन्होंने एक लाइन में उसका वर्णन किया है, हम जरा उसको, क्योंकि यहाँ फुटनोट में सारे जीवकांड के ही उन्होंने उदाहरण दिए हैं, यानी वर्णन किया है। वो जो फुटनोट की बात है वो हम हिंदी में से पढ़ेंगे, 116 पेज पर आना। अग्रायणी है ना, तो अग्र का अर्थ क्या है? द्वादशांगों में जो प्रधान भूत वस्तु के ज्ञान को, अयन को यानी ज्ञान को अग्रायण कहते हैं। अग्र का ज्ञान यानी प्रधान भूत वस्तु का ज्ञान, और उसका कथन करना जिसका प्रयोजन हो उसे अग्रायणीय पूर्व कहते हैं। यह पूर्व 14 वस्तुगत यानी पहले उत्पाद में, उत्पाद पूर्व में 10 पूर्व है, 10 वस्तु थे। ये दूसरा अग्रायणीय, उसमें 14 वस्तु है। 14 वस्तुगत 280 प्रावृतों के, हर एक में कितने? 20-20, तो 14 × 28 280 हो जाते हैं ना। 280 प्रावृतों के 96,00,000 पदों द्वारा, क्योंकि पद हिनादिक हो सकते हैं ना यहाँ पर, उसके तो 1 करोड़ थे, हाँ उसमें तो, उसमें से तो करोड़ थे, हाँ इसमें से तो 96,00,000 है। हाँ क्योंकि हर एक में कम ज्यादा हो सकते हैं, संख्या 1,000 इतना ही बताया है ना, उसका प्रमाण हिनादिक हो सकता है।
अच्छा, पद का प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि क्या पद, नंबर ऑफ पद फिक्स है,
पदों के अक्षर फिक्स है, और एक एक अनुयोग के या जो कोई विषय होगा उसके
अच्छा,
पद फिक्स है,
पद अलग अलग।
तो इसमें कितने पद है टोटल? 96,00,000 पद है। अंगों के अग्र अर्थात परिमाण का कथन करता है। अभी अग्रायणी पूर्व का जो फुटनोट में लिखा है उसके बदले हम जीवकांड हिंदी में से पढ़ेंगे, 498 पेज पर। अग्रायणीय पूर्व, अग्र अर्थात द्वादशांग में प्रधान भूत जो वस्तु, उसका अयन अर्थात ज्ञान, वही है प्रयोजन जिसका, ऐसा अग्रायणी नामक दूसरा पूर्व है। इसमें 700 सुनय और दुर्नय का, सुनय यानी सच्चे नय, सही नय है, दुर्नय खोटे हैं, और सप्त तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य इत्यादि का वर्णन है। इसमें 96,00,000 पद है, इसमें 85 का है क्या? तच्च सप्तशत सुनय दुर्नय 85 का षड द्रव्य। सात तत्व 9 पदार्थ लिखा है उसने। इसमें उन्होंने उसका नंबर नहीं लिखा है। सप्तशत सुनय दुर्नय 85 का षड द्रव्य सप्त तत्व 9 पदार्थादीन वर्णयति, उसका वर्णन करते हैं। 96,00,000 उसके पद है। तीसरा, अभी हम आपके पुस्तक में 116 में वीर्यानुवाद, वीर्यानुप्रवाद पूर्व, उसको वीर्यानुवाद पूर्व भी कहते हैं या वीर्यानुप्रवाद पूर्व भी कहते हैं, वाद कहो प्रवाद कहो एक ही बात है। 8 वस्तुगत, उसमें 8 वस्तु है, हर एक में 20-20 प्रावृत है, 20-8 160 प्रावृतों के 70,00,000 पदों द्वारा, आत्मवीर्य परवीर्य उभयवीर्य क्षेत्रवीर्य भाववीर्य और तपवीर्य का वर्णन करता है। उसमें भी जीवकांड में इससे ज्यादा कुछ लिखा नहीं, इतना ही लिखा है। चौथा है अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, उसमें 18 वस्तुगत, इसमें 18 वस्तु है, और उसके दुगुना करके ऊपर 10 गुना करो, 360 प्रावृतों के 60 लाख पदों द्वारा, उसमें से पद कम है ना, वो 8 वस्तु में 160 प्रावृतों के 70 लाख पद थे और 360 प्रावृतों के यहाँ पर
60
लाख पद हैं। जीव और अजीव के अस्तित्व और नास्तित्व धर्म का वर्णन करता है। जैसे जीव स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा कथनचित अस्थि रूप है, अपेक्षा लगाए ना इसलिए कथनचित कहा, कथनचित यानी स्याद किसी अपेक्षा से, और परद्रव्य परक्षेत्र परकाल और परभाव की अपेक्षा कथनचित नास्ति रूप है, यानी अस्थि हुआ नास्ति हुआ। जिस समय वह स्वद्रव्य चतुष्टय और परद्रव्य चतुष्टय द्वारा अक्रम से अर्थात युगपद विवक्षित होता है, उस समय स्यात् अवक्तव्य रूप है। नहीं समझे? आप कितने बहने हैं? 3 है। नाम बताओ। नहीं नहीं नहीं, एक साथ बताए, नहीं बता सकते, यही कहते हैं युगपत नहीं, अस्थि और नास्ति का कथन युगपत नहीं हो सकता। क्या कहा? कथन की बात है, वक्तव्य की बात है, यानी हमारे 2 बच्ची है, हाँ जान सकते हैं एक साथ, उसका कथन करना है बोलने में, तो केवल पहले बड़ी का नाम ले फिर दूसरी का, क्रम से ले सकते हैं, एट ए टाइम नहीं ले सकते, उसी को कहते हैं अवक्तव्य है, इसको कहेंगे स्यात् अवक्तव्य, किसी अपेक्षा अवक्तव्य, कौन सी अपेक्षा युगपद बताने जाओ तो उसकी अपेक्षा अवक्तव्य, सर्वथा अवक्तव्य होता तो इतने ग्रंथ ही नहीं होते ना, थोड़ा बहुत कुछ तो बताया उन्होंने, परंतु स्वर पर की अपेक्षा एट ए टाइम बताओ अस्थि नास्ति, तो कहते एट ए टाइम बता नहीं सकते, यह है अवक्तव्य। स्वद्रव्यादि रूप प्रथम धर्म, स्वद्रव्यादि ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा वाला वो प्रथम धर्म, और परद्रव्यादि रूप द्वितीय धर्म से जिस समय क्रम से विवक्षित होता है, यानी पहले स्वद्रव्य की अपेक्षा अस्थि पर बाद में परद्रव्य की अपेक्षा नास्ति, क्रम से लगाया, उस समय कथनचित अस्थि नास्ति रूप है, किसी अपेक्षा से अस्थि नास्ति रूप है, यानी वो क्रम से बता रहे, अस्थि पहले बताया फिर नास्ति बताया, ये क्रम से हो सकता है। अब कहते हैं स्याद अस्थि रूप प्रथम धर्म और स्याद अवक्तव्य रूप तृतीय धर्म से जिस समय विवक्षित होता है, उस समय कथनचित अस्थि अवक्तव्य रूप है। देखो मूल में 3 भेद किए, एक अस्थि वाला, एक नास्ति वाला और एक अवक्तव्य वाला, ये 3 हो गए ना। अब कहेंगे ये तो बता चुके, अवक्तव्य क्यों कहा, युगपत नहीं बता सकते, परंतु हम ऐसा, ये पहला धर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, वस्तु को पहले धर्म से बताओ और बाद में तीसरे धर्म से बताओ, उसको क्या कहें, अस्थि अवक्तव्य रूप। पहले बता चुके स्वद्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा अस्थि रूप है, अब कहते तीसरा धर्म जो है ना एट ए टाइम दोनों का, तो नहीं हो सकता, तो अस्थि अवक्तव्य कॉम्बिनेशन लगाया, फिर नास्ति अवक्तव्य होगा, फिर अस्थि नास्ति अवक्तव्य होगा, है ना, अस्थि अस्थि नास्ति भी बता चुके, अस्थि अवक्तव्य भी बता चुके, नास्ति अवक्तव्य भी हो, और सातवां अस्थि नास्ति अवक्तव्य, यही हम पढ़ेंगे। हम देखो ये 7 भंग होते हैं, देखो नीचे से हम पढ़ रहे थे, चौथी लाइन, स्याद अस्थि रूप प्रथम धर्म और स्याद अवक्तव्य रूप तृतीय धर्म से जिस समय विवक्षित होता है, उस समय कथनचित अस्थि अवक्तव्य रूप है, ये समझ में आया। अब कहते स्याद नास्ति रूप द्वितीय धर्म और स्याद अवक्तव्य रूप तृतीय धर्म से जिस समय क्रम से विवक्षित होता है, उस समय कथनचित नास्ति अवक्तव्य रूप है। अस्थि अवक्तव्य हुआ, नास्ति अवक्तव्य हुआ। स्याद अस्थि रूप प्रथम धर्म, स्यात नास्ति रूप द्वितीय धर्म, और स्याद अवक्तव्य रूप तृतीय धर्म से जिस समय क्रम से विवक्षित होता है उस समय कथनचित अस्थि नास्ति अवक्तव्य रूप जीव है। ये जीव की बात चल रही है। जैसे हमने ए में अस्थि लिया, बी में नास्ति लिया, सी में अवक्तव्य लिया, अब इसके कॉम्बिनेशन बताएं। अकेला ए बताओ, अकेला बी, अकेला सी, फिर ए बी, ए सी, बी सी, और फिर ए बी सी, सबका कॉम्बिनेशन ले लो। इतना है ये सप्तभंगी, इससे ज़्यादा उसमें भंग यानी कॉम्बिनेशन नहीं पड़ते। इसी तरह अजीवादि का भी कथन करना चाहिए, वो सभी वस्तुओं पर लगा ले लेंगे ना। तो ये है कौन सा हुआ, ये हमारा
सप्तभंग अजीव में भी लगा लिया।
हाँ, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व में ये लगा लिया। अभी पांचवा ज्ञान प्रवाद पूर्व, इसमें 12 वस्तु है, तो 12 दुनी 24 है, 240 प्रावृत हो गए। 12 वस्तुगत 240 प्रावृतों के एक कम एक करोड़ पद द्वारा, एक करोड़ में एक कम है, यानी 99,999। पांच ज्ञान और तीन अज्ञानों का वर्णन करता है, तथा द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा अनादि अनंत, अनादि शांत, इसका अर्थ समझते हो? अनादि, जिसको कोई शुरुआत नहीं वो अनादि, जिसको कोई एंड नहीं वो अनंत, अंत नहीं, एंड यानी अंत नहीं, अनादि अनंत। दूसरा क्या हो सकता है उसमें? अनादि शांत, अनादि से है परंतु उसका अंत हुआ, जैसे समय दर्शन प्राप्त किया तो उसका मिथ्यात्व तो कैसा कहला, अनादि शांत, एंड हो गया, उसका अंत हो गया। सादि अनंत, जैसे समय दर्शन हुआ, शायद समय दर्शन हुआ कहो, वो कितने काल तक टिकेगा, अभी कायम अनंत काल तक, परंतु उसकी शुरुआत हुई ना, अनादि से नहीं था, तो वो सादि अनंत। और एक होता है सादि शांत, क्रोध उत्पन्न हुआ उसके आदि है और वो मिट गया, दूसरा कुछ कषाय उत्पन्न हुआ, तो सादि शांत कहलाए। या कोई जीव समय दर्शन से मिथ्यात्व में आया, एक बार समय तो प्राप्त किया फिर मिथ्यात्व में आया, अभी वो मिथ्यात्व का नाश करके फिर से दोबारा समय दृष्टि होगा ही, तो उसको क्या कहेंगे, वो सादि शांत। तो कहते इस तरह ये जो चार है उस रूप ज्ञानादि तथा इसी तरह ज्ञान और ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करता है, यानी ज्ञान प्रवाद में ज्ञान का ही वर्णन होगा। हाँ, यानी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अनादि अनंत होगा, द्रव्य का एक ऐसा है अनादि अनंत, द्रव्यार्थिक नय लगाए ना, और बाकी पर्याय की अपेक्षा अलग अलग लगेंगे उसमें, इसमें कुछ अलग बात है, तो देख लो ज्ञान प्रवाद पूर्व में। पांच सम्यक ज्ञान और तीन कुज्ञान का स्वरूप है, और उसमें उसकी संख्या, उसके विषय, फल वगैरह की अपेक्षा उसमें भेद किए, बस इतना ही वहां लिखा है। अब सत्य प्रवाद पूर्व 6 नंबर का, उसमें 12 वस्तु है, तो 12 वस्तुगत 240 प्रावृतों के 1,06,000 पदों द्वारा, उसमें करोड़ में एक कम था, 12 ही वस्तुएं थी। हाँ, इसमें 1,06,000 पदों द्वारा वचन गुप्ति, वाक संस्कार के कारण, वाक यानी वाणी, वाक संस्कार यानी वचन संबंधी संस्कार के कारण वचन प्रयोग, 12 प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार के वक्ता, अनेक प्रकार के असत्य वचन और 10 प्रकार के सत्य वचन, इन सब का वर्णन करता है। हमने वो 10 प्रकार के सत्य देखा था, नाम सत्य वगैरह वगैरह, जीवकांड में देखा था ना, हाँ, इन सबका वर्णन करता है। असत्य नहीं बोलने को अथवा वचन संयम अर्थात मौन के धारण करने को वचन गुप्ती कहते हैं। मस्तक, कंठ, कंठ समझते ना, हृदय, जिह्वा का मूल यानी वो टंग जहाँ अंदर चिपकी, वो जिह्वा का मूल, दांत, नासिका, तालू और ओठ, ये आठ वचन संस्कार के कारण है। यानी इनके द्वारा वो वचन में शब्द जो बोलने में जो कुछ उसके उच्चारण होते हैं अलग अलग, उसमें ये कारण है। शुभ और अशुभ लक्षण रूप वचन प्रयोग का स्वरूप सरल है। यानी वचन का प्रयोग करते हैं वो शुभ रूप है, शुभ वचन अशुभ वचन कहाँ गया, हाँ, अभ्याख्यान वचन अभी मिथ्य, ये जो अलग अलग जो है ना ऊपर 12 प्रकार की भाषा लिखा था ना ऊपर, उसकी बात करें, अभ्याख्यान वचन, कलह वचन, पैशून्य वचन, अबद्ध प्रलाप वचन, रति वचन, अरति वचन, उपधि वचन, निकृति वचन, अप्रणति वचन, मोश वचन, सम्यक दर्शन वचन और मिथ्या दर्शन वचन के भेद से भाषा 12 प्रकार की है। अभी ये उसका अर्थ बता रहे हैं। अभ्याख्यान भाषा किसको कहते हैं, यह इसका कर्ता है, इस तरह अनिष्ट कथन करने को अभ्याख्यान भाषा कहते हैं। यानी किसी ने कोई, ये किसने किया हम पूछेंगे, कोई गलत काम हुआ है किसने किया तो बता देना उसको, शायद बताएंगे उसको। किसमें आया वो, सत्य प्रवाद में ना, अनिष्ट वचन ने चुगली खाना ना, इन्हें ऐसे ऐसा काम किया, चुगली करके जाके बताते ना इसने ऐसा किया, वो ये अभ्याख्यान। हाँ, कलह में आगे आएगा ना, कलह ने वो तो झगड़ा करना, कलह का अर्थ स्पष्ट ही है, परस्पर विरोध के बढ़ाने वाले वचनों को कलह वचन कहते हैं। पीछे से दोष प्रकट करने को पैशून्य वचन कहते हैं। पीछे से नहीं, किसके पीठ के पीछे हम बोलना कहते हैं ना, वो वाली बात। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध से रहित वचनों को अबद्ध प्रलाप वचन कहते हैं। इंद्रियों के शब्दादि विषयों में राग उत्पन्न करने वाले वचनों को रति वचन कहते हैं। इंद्रियों के शब्दादि विषयों में रति को उत्पन्न करने वाले वचनों को अरति वचन कहते हैं। जिस वचन को सुनकर परिग्रह के अर्जन और रक्षण करने में आसक्ति उत्पन्न होती है उसे उपधि वचन कहते हैं। जिस वचन को अवधारण करके जीव वाणिज्य में ठगने रूप प्रवृत्ति करने में समर्थ होता है उसे निकृति वचन कहते हैं। जिस वचन को सुनकर तप और ज्ञान से अधिक गुण वाले पुरुषों में भी जीव नम्रीभूत नहीं होता है उसे अप्रणति वचन कहते हैं। जिस वचन को सुनकर चौर्य कर्म में प्रवृत्ति होती है उसे मोक्ष वचन कहते हैं। समीचीन मार्ग का उपदेश देने वाले वचन को सम्यक दर्शन वचन कहते हैं और मिथ्या मार्ग का उपदेश देने वाले वचन को मिथ्या दर्शन वचन कहते हैं। ये 12 भेद हो गए। अभी वक्ता की बात है ना, कौन सी बात है सत्य में, अनेक प्रकार के वक्ता। अब वक्ता किसको कहेंगे, वो कहते हैं जिनमें वक्तृ पर्याय प्रकट हो गई है। वक्तृ पर्याय ने बोलना, आवाज निकालते हैं उसको वक्ता कहेंगे। तो ऐसे कौन है, द्विंद्रिय से आदि लेकर सभी जीव वक्ता है। एक इंद्रिय को केवल छोड़ दिया, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय सभी बोलने वाले हैं, क्योंकि उनको वचन योग भी है और उनकी भाषा भी होती है। अब असत्य वचन, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा असत्य अनेक प्रकार का है। अब सत्य भी दो 10 प्रकार का बताया है, नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीत्य सत्य, समृति सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, देश सत्य, भाव सत्य और समय सत्य के भेद से सत्य वचन 10 प्रकार का है। यह हम समझा है, उसका बताया है। नाम सत्य किसको कहना, मूल पदार्थ के नहीं रहने पर भी सचेतन और अचेतन द्रव्य के व्यवहार के लिए जो संज्ञा की जाती है उसे नाम सत्य कहते हैं। हमने देखा था नाम निक्षेप की अपेक्षा हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, उसके लिए उसमें वो गुण होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे का नाम अरिहंत भी रखते हैं, सर्वज्ञ भी रखते हैं ना, ये नाम सत्य है। जैसे ऐश्वर्यादि गुणों के न होने पर भी किसी का नाम इंद्र ऐसा रखना नाम सत्य है। इंद्र नाम लिखते हैं ना, इंद्रजीत या ऐसा कुछ भी नाम रखेंगे हम। पदार्थ के नहीं होने पर भी रूप की मुख्यता से जो वचन कहे जाते हैं उसे रूप सत्य कहते हैं। क्या कहना, जैसे चित्र लिखित पुरुष आदि में, मैंने किसी का चित्र बनाया है तो चित्र में तो वहाँ कोई ज्ञान उपयोग वगैरह तो है ही नहीं है, उसमें चैतन्य और उपयोगादिक रूप अर्थ के नहीं रहने पर, अर्थ यानी वो पदार्थ भी नहीं है वहाँ पर, फिर भी पुरुष इत्यादि कहना रूप सत्य है। या शिवाजी महाराज का हमने वो चित्र बनाया, ये हमारे शिवाजी महाराज है, वो तो चल बसे अभी कभी के, उसमें उनका कुछ नहीं है, है ना, ये रूप सत्य है। ये हमने नहीं देखे, फोटो दिखाते हैं, ये हमारे पिताजी हैं ऐसे कहते हैं ना, उसको क्या है, ये रूप सत्य है। ये कांजी स्वामी है, उनका फोटो ऐसा नहीं कहेंगे, ये कांजी स्वामी है कहना, ये क्या है, रूप सत्य है। मूल पदार्थ के नहीं रहने पर भी कार्य के लिए जो द्युत संबंधी अक्ष आदि में, पांसा आदि में स्थापना की जाती है उसे स्थापना सत्य कहते हैं। जैसे शतरंज का जो है ना, उसमें हाथी घोड़ा प्यादे वो जो बताते हैं वो क्या है, स्थापना सत्य, जिसको हम स्थापना निक्षेप की अपेक्षा उसमें रखते हैं, व्यवहार ऐसा करते हैं। सादी और अनादि भावों की अपेक्षा जो वचन बोला जाता है उसे प्रतीत्य सत्य कहते हैं। ये 7 प्रकार के सत्य पहले आ चुके थे ना, नहीं उसमें ये था ना, ये आपकी इधर है, इसमें ये लो सत्य के 10 भेद, उसमें कहा है, क्या है आदि, हाँ एक मिनट, वो जहाँ इसमें है वो योग में, योग मार्गणा में है, मनोयोग वचन योग के भेद है ना, उसमें ही है, योग मार्गणा निकालें, गति इंद्रिय का योग, ये योग निकाला। हाँ 342 पर, अभी कौन सा सत्य देख रहे थे हम, प्रतीति सत्य ना, रूप सत्य, सापेक्ष सत्य, प्रतीत्य सत्य। अच्छा प्रतीत्य सत्य इसको कहा उन्होंने, हाँ
शादी और अनादि भाव की अपेक्षा,
शादी और अनादि भाव की अपेक्षा जो वचन बोलना चाहते हैं उसमें उन्होंने ऐसा वर्णन किया है, सापेक्ष सत्य कहा इसको। तो विवक्षित वस्तु को हीन या अधिक मान, लंबाई वजन इत्यादि वचन कहते, जैसे हमने हल्का कहना भारी कहना, ये क्या है? सापेक्षता से कहते ना, इससे ये हल्का है इससे ये भारी है, ये लंबा है ये थिंगना, ये क्या है? वो सापेक्षता से। हाँ नहीं, प्रतीत सत्य उसको कहेंगे। यहाँ उन्होंने केवल शादी और अनादि भावों की अपेक्षा बताया है, परंतु उसमें वो सापेक्ष की बात आती है, सापेक्षता। न उसका अर्थक करने के लिए सापेक्षता से वस्तु का कथन होता है। प्रतीत्य है वो, प्रतीति नहीं है, प्रतीत्य। आगे वाली, लोक में जो वचन संवृत्ति अर्थात कल्पना के आश्रित बोले जाते हैं उन्हें संवृत्ति सत्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी आदि अनेक कारणों के रहने पर, वो कहने पर हुआ है ना, रहने पर चाहिए, रहने पर भी जो पंख अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं इत्यादि। यानी फूल कमल का जो है ना पंकज, भले वो वहाँ कीचड़ नहीं हो पानी में भी होगा तो फिर उसको पंकज कहते हैं, ये उसका कहने की प्रघात है, उसको संवृत्ति सत्य कहा। संवृत्ति यानी कल्पना, सम्मति यानी बहुत से जीवों के द्वारा वैसा माना जाता है। जैसे कोई पटरानी नहीं उसको देवी कहना, ये उन्होंने उदाहरण दिया है शिवकांड में। आगे संयोजना सत्य, धूप के सुगंधी चूर्ण के अनुलेपन और प्रघर्षण के समय अथवा पद्म मकर हंस सर्वतो भद्र और क्रौंच आदि रूप व्यूह रचना के समय सचेतन और अचेतन द्रव्यों के विभागानुसार विधि पूर्वक रचना विशेष के प्रकाशक जो वचन है उन्हें संयोजना सत्य कहते हैं। संयोजना करने ने उसकी जो व्यूह रचना वगैरह जो होती है ना उसको संयोजना सत्य कहा उन्होंने। हाँ यहाँ संभावना नहीं, संभावना अलग है और संयोजना अलग है। रूप सत्य, नाम सत्य, स्थापना सत्य, उसमें नहीं अपने उसमें नौ दस, दसवां नंबर कहाँ है? थ्री फोर्टी फोर दसवां नंबर डाला है, उपमा सत्य के लिए डाला है। हाँ यहाँ संयोजना वाली बात नहीं लिखी, ठीक है यहाँ से पढ़ते हैं। वहाँ संभावना सत्य लिखा था, नहीं 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 संयोजना सत्य लिखा है ना, वहाँ संभावना सत्य लिखा है, यानी जम्बूद्वीप पलटाने की ताकत है वो वाली बात, वो वाली लिखी है उसके अंदर। हाँ इसमें जो व्यूह की रचना करते हैं ना, जगह चक्र व्यूह, सैनिकों ने कैसी किस तरह से उसकी सैनिकों की रचना करनी है उस संबंधी जो ये शब्द है उसको संयोजना सत्य कहा। उपमा सत्य में ले सकते हैं, मगर उसकी उपमा में वो पल्ले अंगुल वगैरह वो उस उपमा में लेते हैं, पल्ले सागर वगैरह कहना उपमा दे के समझाए ना, उसको उपमा सत्य में लेंगे। अब यहाँ क्या क्या लिखते हैं वो देखते हैं। हाँ आर्य और अनार्य के भेद से 32 देशों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्राप्त कराने वाले वचन को जनपद सत्य कहते हैं। यहाँ जनपद सत्य का अर्थ जो जो अन्य अन्य देशों में जो प्रवृत्ति रूप वचन होता है, जैसे चावल के लिए कोई भात कहता है, कोई ओदन कहता है, कोई अन्नम कहता है, ये उसके अलग अलग शब्द हैं। अब देश सत्य, ग्राम, नगर, राजा, गण, पाखंड, जाति और कुल आदि के धर्मों के उपदेश देने वाले जो वचन हैं उन्हें देश सत्य कहते हैं। धूप के सुगंधी चूर्ण के अनुरूपण और प्रदर्शन के समय जो सचेतन अचेतन द्रव्यों के विभाग विधि पूर्वक रचना, अब उसका उसका संबंध नहीं समझ में आया। वहाँ संयोजना क्या की उन्होंने, इन्हें कैसे करना, क्या वगैरह वगैरह हो गए। अभी देश सत्य की बात हुई ना, देश सत्य में उन्होंने वो जो देशों के भेद से
ग्राम नगर
जो अलग अलग होते हैं, जनपद सत्य कहा, जनपद सत्य नहीं नहीं देश सत्य में ग्राम नगर राजा वगैरह वगैरह धर्मों के उपदेश देने वाले वचन को देश सत्य कहा। छद्मस्थों का ज्ञान यद्यपि द्रव्य की यथार्थता का निश्चय नहीं कर सकता है, तो भी अपने गुण अर्थात धर्म के पालन करने के लिए यह प्रासुक है, यह अप्रासुक है इत्यादि रूप से जो संयत और श्रावक के वचन है उन्हें भाव सत्य कहते हैं। यानी किसी वस्तु को प्रासुक कहना, जैसे जल ये प्रासुक जल है कहना, या कोई चीज खाने की वो प्रासुक या अप्रासुक, किस अपेक्षा से कहते हैं कि हमारे चरणानुयोग के जो कुछ कथन के अनुसार इसको कहते हैं। देखो इसका अर्थ यहाँ ऐसा लिखा है जो संकल्प रूप परिणाम, भावों में हमने उसका ऐसा संकल्प कर दिया, जैसे जो सूख गई है अग्नि से पक्व हो, या घरटी कोलू इत्यादि यंत्र से छिन्न की हो, या खटाई या लवण से मिश्रित हुई हो, या भस्मीभूत हुई वस्तु हो, उसे प्रासुक कहना। जिसे प्रासुक करने की जो विधि बताई है तीन शास्त्र में उसके अनुसार उसको प्रासुक कहना, ये भाव सत्य है। आगम गम्य प्रतिनियत छह प्रकार की द्रव्य और उनकी पर्यायों की यथार्थता के प्रकट करने वाले जो वचन हैं उन्हें समय सत्य कहते हैं। यानी ये जो अपने छह प्रकार के द्रव्य छह प्रकार की द्रव्य और पर्यायों की यथार्थता ऐसा लेना है, छह प्रकार की द्रव्य और पर्यायों की यथार्थता, यथार्थता के लिए छह प्रकार की यथार्थता लिखी,
उनकी पर्याय
यथार्थता के लिए की शब्द लगाया और हुआ कि और पढ़ा ना हमने अभी वो पहले सब सबके पुस्तकों में करेक्शन है। हाँ और करना जिसके इसमें नहीं है ना, और का और कर देना। अभी हम यही रुकेंगे। ये सत्य की बात, हमने अलग अलग प्रकार के 10 प्रकार के सत्य देखे, ये सब सत्य प्रवाद की बात थी ना अपनी, सत्य प्रवाद पूर्व 6 पूर्वों की बात हुई, बाकी की कल। जावानी की जा